पृष्ठ संख्या 257, बौद्धिक विकास की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नंबर एक, बौद्धिक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आकर्ष फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। शारीरिक, मानसिक एवं गत्यात्मक विकास की तरह बौद्धिक विकास भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चूँकि बुद्धि एक सूक्ष्म शक्ति है, अतः इसका विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। उदाहरण, जन्म के बाद बालक अपनी हरेक आवश्यकताओं की पूर्ति रोकर करता है, तब उसे वातावरण की इतनी समझ नहीं होती है। धीरे धीरे परिपक्वता एवं अधिगम से वह आसपास के विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, फिर विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण करता है और उनसे वातावरण संबंधी प्रत्यय बनाता है, तथा अंत में चिंतन, कल्पना, स्मरण एवं तर्क के आधार पर सुनियोजित क्रियाएं करता है। अतः स्पष्ट है कि बौद्धिक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नंबर दो, बौद्धिक विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रतिफल होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है जिसका निर्धारण माता के गर्भ में ही बालक के जन्म से पूर्व ही हो जाता है, मगर इसके विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बुद्धि का विकास वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यदि किसी बालक की बुद्धि तो कुशाग्र है, परंतु यदि उसे सीखने के पर्याप्त अवसर एवं प्रशिक्षण नहीं दिए जाएं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति समय पर नहीं की जाए, तो उनकी बौद्धिक क्षमताओं का उतना विकास नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। उदाहरण, भारत के गांवों में गरीब परिवारों में कुशाग्र बुद्धि के अनेक बालक होते हैं, परंतु शिक्षा के अवसरों की कमी, विद्यालय का अभाव आदि कारणों से बालक की बौद्धिक क्षमताओं का पूरा पूरा विकास नहीं हो पाता है। फलतः वे सामान्य कामकाज, ड्राइविंग, मजदूरी आदि करके अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मंद बुद्धि के बालकों को चाहे कितनी ही अधिक शिक्षण सुविधाएँ क्यों ना दी जाएँ, भले ही उन्हें पढ़ने लिखने के लिए विदेश क्यों नहीं भेजा जाए, परंतु उनकी बौद्धिक क्षमताएं उतनी अधिक विकसित नहीं हो सकती हैं। अतः स्पष्ट है कि बौद्धिक विकास के लिए अनुवांशिकता एवं वातावरण, इन दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर तीन, बौद्धिक विकास क्रमिक होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आकर्स इन ऑर्डर। किसी भी बालक का बौद्धिक विकास रातों रात विकसित नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कल तक जो बालक सामान्य बुद्धि का था, वह आज प्रातःकाल सोकर उठा तो कुशाग्र बुद्धि का हो गया, अपितु बौद्धिक विकास अनवरत रूप से क्रमिक गति से होता है। बौद्धिक विकास क्रम में बालक संवेदनाओं के फलस्वरूप प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, तत्पश्चात वह विभिन्न वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर प्रत्यय का निर्माण करता है और सबसे अंत में अपने चिंतन, तर्क, समझ के द्वारा उचित निर्णय लेकर अपने क्रियाओं को बेहतर अंजाम देता है। वह अपनी समझ शक्ति से प्रेरित होकर काम करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। नंबर चार, बौद्धिक विकास विगत और वर्तमान अनुभवों का योग होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। बौद्धिक विकास क्रम में बालक को जो कुछ भी सीखता है वह भूतकाल एवं वर्तमान के अनुभवों पर आधारित होता है। Understanding is achieved by applying previously knowledge to a new situation and experience. वह विगत अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करता है, उसे कुछ नया सीखता है और फिर अपने चिंतन व कल्पना के द्वारा मन में विचार करता है और फिर उचित निर्णय लेकर सही काम करता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई बालक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में आगे आना चाहता है और सचिन तेंदुलकर की भांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाज बनकर नाम कमाना चाहता है, तो पहले वह विगत अनुभव के आधार पर ज्ञात करता है कि खेल का प्रदर्शन काउंटी क्रिकेट में या एक दिवसीय खेलों में अथवा टेस्ट मैचों में किस स्तर का था। यदि प्रदर्शन अच्छा नहीं था तो क्या कारण थे, कारणों को जानकर वह फिर अपने खेल में सुधार करता है। कोच की बात मानता है, अपने साथियों के सुझाव को ध्यान में रखकर निरंतर अभ्यास करता है। वह अपनी योजना इस तरह से बनाता है कि उसका चयन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टीम में बल्लेबाज के रूप में हो सके। नंबर पाँच, बौद्धिक विकास अधिगम एवं परिपक्वता की देन है। लर्निंग एंड मैच्योरेशन कंट्रीब्यूट्स इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बौद्धिक विकास में अधिगम एवं परिपक्वता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक बालक के मस्तिष्क केंद्रीय अधिगम एवं नाड़ी संस्थान तथा तंत्रिकाओं में परिपक्वता नहीं आती, तब तक बालक में समझ की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। परिपक्व स्थिति में ही सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, धारण करने आदि क्षमताओं का विकास होता है। मैच्योरेशन प्रोवाइड्स अ स्टेट ऑफ रेडियंस टू अंडरस्टैंड। कारण स्पष्ट है कि बौद्धिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन मस्तिष्क के ऊपर वाले भाग से होता है। शिशु जन्म के समय यह केवल 50% ही विकसित होता है। शेष 50% का विकास बालक की उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी तंत्रिकाएं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं में भी विकास होता जाता है और परिपक्वता आती जाती है। अतः बालक का बौद्धिक विकास होता जाता है। थर्नस्ट के अनुसार बाल्यकाल में बौद्धिक विकास 9 से 10 वर्ष तक तीव्र गति से चलता रहता है। तत्पश्चात इसकी गति मंद पड़ जाती है। फिर 12 से 14 वर्ष की आयु में पुनः बौद्धिक विकास तीव्र हो जाता है। 14 वर्ष की अवस्था में बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और फिर 18 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते बौद्धिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात बौद्धिक विकास नहीं होता है। यही कारण है कि 1-20 वर्ष और 40 वर्ष के व्यक्ति की बुद्धि समान हो सकती है, परंतु उनके अनुभव एवं ज्ञान में पर्याप्त अंतर हो सकता है। थर्नस्ट का मानना है कि बालकों में मानसिक योग्यता भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर परिपक्व होते हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण की क्षमता 12 वर्ष में, स्थानगत एवं तर्क की क्षमता 14 वर्ष में, संख्यात्मक एवं स्मृति की क्षमता 16 वर्ष में, शब्दबोध तथा भाषा प्रवाह की क्षमता 16 वर्ष के बाद परिपक्व होती है। नंबर 5, बौद्धिक विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर सीन इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक विकास भिन्न भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक ही माता के उदर में पल रहे दो जुड़वा बालकों का भी बौद्धिक विकास अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही खेत में धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा व मक्का के बीज बो दिए जाएं और उन्हें एक ही माली रोज पानी पिलाए, खाद दे और रखरखाव करे, परंतु उन बीजों में अलग अलग ही पौधे निकलेंगे। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के बौद्धिक विकास में पर्याप्त अंतर होता है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बुद्धिलब्धि समान होने पर दो व्यक्तियों के बौद्धिक विकास में समानता नहीं रहती है। किसी भी तर्क शक्ति अधिक होती है तो किसी की चिंतन शक्ति, किसी की लेखन शक्ति अधिक होती है तो किसी की वाक शक्ति, किसी की स्मरण शक्ति अधिक होती है तो किसी की कल्पना शक्ति। इस प्रकार हर एक व्यक्ति के बौद्धिक विकास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नंबर 6, बौद्धिक विकास तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। बौद्धिक विकास का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, खेल आदि विकास से जो गहरा नाता रिश्ता है। उदाहरण, यदि शरीर अस्वस्थ है तो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। व्यक्ति खिन्न, उदास एवं चिड़चिड़ा रहने लगता है, मानसिक अवसाद रहने लगता है। मानसिक विकास अवरुद्ध होने से बौद्धिक विकास रुक जाता है। इसी प्रकार संवेगात्मक विकास में बाधा पहुंचने पर सामाजिक विकास प्रभावित होता है। फलतः बालक का समाज के साथ अच्छा समायोजन नहीं हो पाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बौद्धिक विकास तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर संबंधित होते हैं। नंबर 7, बौद्धिक विकास शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन टीचिंग एंड डायरेक्शन। बौद्धिक विकास में शिक्षण एवं निर्देशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब बालक विद्यालय जाने लगता है तो वहाँ पहले वह अपने कक्षा के विद्यार्थियों के साथ समायोजन करना सीखता है, फिर विद्यालय के शिक्षकों की आज्ञा को मानता है और उनके कहे अनुसार कार्य करता है। धीरे धीरे विद्यालय की सुनियोजित पाठ्यक्रम के शिक्षण से बालक की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति आदि का विकास होता है। जब वह बालकों की सुचारपूर्ण तरीके से सुनियोजित ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, तब तक उसका बौद्धिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। बालक को जितना अच्छा शिक्षण एवं निर्देशन दिया जाता है उसका बौद्धिक विकास उतना ही अच्छा होगा। पृष्ठ संख्या 259, बौद्धिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंस स्टेजेस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। किसी भी बालक में बौद्धिक विकास रातों रात नहीं होता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक, सामाजिक विकास आदि की भांति इसका विकास भी धीरे धीरे एवं क्रमबद्ध ढंग से होता है। बौद्धिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्नानुसार हैं। नंबर एक, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्टेजेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। प्रतिवर्त क्रियाएं बौद्धिक विकास की पहली अवस्था है। शिशु जन्म के बाद केवल प्रतिवर्त क्रियाएं ही करता है। ये क्रियाएं भूख प्यास लगने, दर्द होने, कष्ट होने, पेट में ऐंठन होने आदि के आंतरिक उद्दीपन से होता है। तेज रोशनी, धूप, अंधकार, तीव्र शोर आदि के प्रति शिशु प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। नंबर दो, ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था, स्टेजेज ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस। बौद्धिक विकास की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था। बालकों में बुद्धि विकास के साथ साथ ही उनकी प्रतिवर्ष क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। वह ऐच्छिक क्रियाओं का प्रदर्शन तब तक करता है जब तक वह चलने फिरने लगता है और अपने आसपास की वस्तुओं का निरीक्षण करने लग जाता है। फिर वह अपने चिंतन एवं तर्क द्वारा उनका विश्लेषण करता है। अब वह भाषा एवं संकेतों के द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं का प्रदर्शन करने लग जाता है। पृष्ठ संख्या 260। नंबर तीन, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था, स्टेजेज ऑफ मीनिंगफुल एक्शंस। बौद्धिक विकास की तीसरी अवस्था उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने स्मरण, ध्यान, चिंतन, तर्क, अनुभव, ज्ञान शक्ति, वाक शक्ति आदि के आधार पर उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। वह भूतकाल में किए गए कार्यों एवं विगत अनुभवों के आधार पर वर्तमान की क्रियाएं करता है तथा भविष्य को सुंदर, सुखद एवं आनंदमय बनाने के लिए भरपूर चेष्टा करता है। उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के द्वारा वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति करता है। नंबर चार, निर्देशित क्रियाओं की अवस्था, स्टेजेज ऑफ गाइडेड एक्शन। बौद्धिक विकास की चौथी महत्वपूर्ण अवस्था है निर्देशित क्रियाओं की अवस्था। बालकों के भविष्य को सुंदर, सुखद एवं आनंदमय बनाना इतना आसान नहीं है। उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें सही शिक्षण के साथ साथ समय समय पर सही निर्देशन भी दिया जाए ताकि वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लें। समय पर दिए गए उचित निर्देशन से बालकों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। वे मंजिल तक स्वतः ही पहुँचते चले जाते हैं, अतः उनका वर्तमान खुशहाल एवं भविष्य सुखद बनता जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे समय पर वर्षा हुई तो खेत खलिहानों में हरियाली छा जाती है, किसान वर्षा को देखकर झूम उठता है और उसके सपने साकार होते नजर आते हैं। अतः माता पिता एवं शिक्षकों के साथ ही समाज के लोगों का परम दायित्व एवं कर्तव्य है कि वे बालक को सही दिशा निर्देश दें, पग पग पर उनकी सहायता करें ताकि उनका बौद्धिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। नंबर पाँच, नियोजित क्रियाओं की अवस्था, स्टेजेज ऑफ प्लान्ड एक्शन। बौद्धिक विकास की पांचवी एवं अंतिम अवस्था है नियोजित क्रियाओं की अवस्था। जब बालक का बौद्धिक विकास अपने चरम सीमा पर होता है तब वह हर एक कार्य को काफी सोच समझकर, तर्क द्वारा चिंतन करके सुनियोजित तरीके से करता है। सुनियोजित तरीके से कार्य करने पर लक्ष्य की पूर्ति आसानी से हो जाती है। जैसे यदि कोई बालक IIT करके प्रसिद्ध इंजीनियर बनना चाहता है तो सबसे पहले वह कक्षा 8 से ही विज्ञान एवं गणित के विषयों में रुचि लेकर पढ़ना प्रारंभ कर देता है और 12वीं कक्षा में कम से कम 60% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करता है। उसे गणित एवं विज्ञान विषय की बृहद जानकारी रहती है। फिर वह इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु नामी संस्थान में कोचिंग करता है। तत्पश्चात समय आने पर IIT में एडमिशन हेतु फॉर्म भरता है और फिर प्रवेश हेतु परीक्षा देता है। तब जाकर कहीं वह सफल होता है और तब कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक कुशल, योग्य, कर्मठ एवं सफल इंजीनियर बनता है। इस प्रकार बौद्धिक विकास विभिन्न अवस्थाओं के क्रमानुसार होता है। पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव एबिलिटी विच मेक्स अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल डेवलपिंग टू मेजर पीरियड्स इन्वॉल्विंग फोर स्टेजेस द सेंस मॉनिटर 0 to 2 ईयर, द प्री ऑपरेशन स्टेज 2 to 6 ईयर्स, द स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन 6 to 12 ईयर्स एंड द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन 11, 12 एंड ऑनवर्ड्स। इन चारों अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन संबंधित अध्याय में किया गया है। पृष्ठ संख्या 261, बौद्धिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं एक नज़र में। नियोजित क्रियाओं की अवस्था, निर्देशित क्रियाओं की अवस्था, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की अवस्था, ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। बौद्धिक विकास की विशेषताएं मात्र एक नज़र में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एट अ ग्लांस। बौद्धिक विकास की विशेषताएं सामान्य से विशिष्ट की ओर, अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रतिफल। बौद्धिक विकास अनवरत एवं क्रमिक होता है, परंतु एक निश्चित उम्र तक ही। बौद्धिक विकास विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग है, अधिगम एवं परिपक्वता की देन है। व्यक्तिगत भिन्नता बौद्धिक विकास में देखी जा सकती है। बौद्धिक विकास तथा विकास के अन्य पहलू परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, शिक्षण एवं निर्देशन पर निर्भर करता है। विभिन्न अवस्थाओं में बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। नंबर एक, शैशवावस्था एवं बचपनावस्था में बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड बेबीहुड 0 to 2 ईयर्स। नंबर एक, संवेदी अंगों में संवेदना, बालकों में बौद्धिक विकास जन्म से कुछ दिनों बाद होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बौद्धिक विकास का सीधा संबंध मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र के विकास एवं उनकी परिपक्वता से है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास नहीं होता है, परंतु जन्म के बाद धीरे धीरे इन अंगों में विकास होना प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में बौद्धिक विकास ज्ञानेंद्रियों से होता है। जन्म के पश्चात पहले शिशु की आँखें तेज रोशनी एवं धूप के प्रति क्रियाशील होती हैं, फिर कान वाले भाग में विकास होता है। अब बालक आवाज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाता है, फिर संवेदना जीभ में आती है, उसके बाद त्वचा में और सबसे अंत में नाक में क्रियाशीलता आती है। जब 1 माह के शिशु के हाथ पैरों को स्पर्श किया जाता है, वह अपने हाथों पैरों को समेटने लगता है। इसी समय से उसकी स्वानेन्द्रियाँ भी कार्य करने लग जाती हैं। जब उसे खट्टे मीठे कड़वे तीखे आदि स्वाद वाली जीभ को चटाया जाता है, तो वह भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। लगभग 2 से 3 माह का शिशु विभिन्न प्रकार के स्वादों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाता है। यदि 3 माह के शिशु को संतरे अथवा मौसमी का रस मिलाया जाए, तो वह उसके खट्टे मीठे स्वाद के प्रति अपना मुंह बनाकर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। सबसे अंत में नाक का विकास होता है। लगभग 2 से 2.5 वर्ष में बालकों में सूंघने की क्षमता का विकास होता है। नंबर 2, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालकों में भाषा का विकास जन्म से ही हो जाता है, परंतु उसका स्पष्टीकरण बाद में होता है। जन्म के बाद शिशु का प्रथम क्रंदन ही भाषा विकास की पहली सीढ़ी है। तत्पश्चात वह बबलिंग कोइंग द्वारा विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालता है। किलकारियां भरना, मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालना, ऊ आ ई आदि शब्दों को बोलना, ये सभी भाषा विकास के ही सोपान है। 6 माह का बालक बा बा ना ना ता ता पा पा आदि शब्दों को बार बार बोलता है और किलकारियां भरता है। 1 वर्ष का बालक अपनी तोतली मीठी एवं अस्पष्ट वाणी से दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार वह अनुकरण द्वारा धीरे धीरे माँ पापा नाना टाटा पापा आदि सरल शब्दों को बोलना सीख जाता है। नंबर 3, अनुकरण इमिटेशन। 6-7 माह का बालक दूसरों का अनुकरण करके बहुत कुछ सीख जाता है, परंतु तब वह बोलता नहीं है, परंतु बोलते समय बड़े ही ध्यान से सुनता है। वह भाषा का अनुकरण करता है। एक वर्ष का बालक और अधिक अच्छी तरह से बोलना सीख जाता है और भूख लगने पर रोटी, दूध या मनपसंद वस्तुओं की मांग करता है। वह प्यास लगने पर पानी की गिलास को स्वयं लेकर पीने का उपक्रम करता है। 2 वर्ष का बालक दूसरों के अनुकरण द्वारा अनेक क्रियाओं को करना सीख जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास 3 से 5 वर्ष। नंबर 1, ध्यान पूर्वक देखना अथवा अवलोकन करना। पूर्व बाल्यावस्था के बालकों में अवलोकन की अभूतपूर्व क्षमता होती है। वे अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हर एक वस्तु को छूकर, देखकर, फेंककर, उलट पलट कर, चारों तरफ से घुमाकर, पटक कर देखना चाहते हैं। इस प्रकार से वे कई बार वस्तुओं को तोड़ फोड़ भी देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार वे तेल, दवाइयां आदि को अपने शरीर पर गिरा लेते हैं, तो कई बार वस्तुओं को तोड़ने के कारण उन्हें चोट लग जाती है। वे प्रत्येक वस्तु को बड़े ही ध्यान से देखते हैं तथा उसके बारे में स्वतः ही जानकारी प्राप्त करते हैं। वह उन वस्तुओं के बारे में बार बार अपने माता पिता एवं शिक्षकों से पूछते हैं कि ये क्या है, ये कहाँ मिलता है, पक्षी आकाश में क्यों उड़ता है, क्या मैं पक्षी की तरह आकाश में नहीं उड़ सकता, बिल्ली दूध क्यों पी जाती है आदि आदि। इस तरह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वह विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, अतः उसे विभिन्न वस्तुओं के बारे में प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। पृष्ठ संख्या 263। नंबर 2, समझ अथवा बोध, अंडरस्टैंडिंग। 2 से 5 वर्ष के बालकों में विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानने की समझ पैदा हो जाती है। अब वह यह समझने लगता है कि यदि जलती हुई लालटेन की चिमनी को छू लिया जाए तो उसका हाथ जल जाएगा। इस कारण वह अपने हाथ को जलती हुई लालटेन के पास नहीं ले जाता है। वह तीखा, मीठा, खट्टा, कड़वा स्वाद को भी समझने लगता है। इसी प्रकार वह विभिन्न प्रकार के चॉकलेट के स्वाद को भी समझने लगता है और मनपसंद चॉकलेट खरीदता है। वह ठंडा एवं गर्म में भेद करने लग जाता है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने माता पिता, भाई बहनों एवं सगे संबंधियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। नंबर 3, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। पूर्व बाल्यावस्था के बालकों में भाषा विकास भी तीव्र गति से होने लगता है। 3 वर्ष का बालक जिन शब्दों को बोलता है उसका अर्थ भी वह भली भांति जानता है। जैसे यदि 3 वर्ष के बालक को कहा जाए कि जाओ और माँ से मांगकर दूध का बोतल ले आओ, तो पहले अपनी माँ के पास जाता है, फिर उससे दूध की बोतल की मांग करता है। इस प्रकार बालक को माँ, दूध और बोतल शब्द का बोध हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था का बालक अस्पष्ट उच्चारण करने लगता है। उसके शब्दकोशों में भी निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। 4 से 5 वर्ष के बालकों में विभिन्न प्रत्ययों के संबंध में जानकारी हो जाती है। अब वह उन प्रत्ययों के संबंध में भाषा का प्रयोग करता है। वह अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भाषा का प्रयोग करता है। जैसे प्यास लगने पर पानी दे दो, भूख लगने पर बिस्कुट अथवा रोटी दे दो कहते हैं। इसी प्रकार वह विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भाषा के माध्यम से बोलकर करता है। धीरे धीरे बालक खूब बोलने लग जाता है। 3 से 5 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना भी सीख जाता है। अंग्रेजी एवं हिंदी के अक्षरों का ज्ञान भी हो जाता है। वह सरल शब्दों को लिख पढ़ भी लेता है, जैसे राम, आम, दादा, नाना, काका आदि। वह छोटे वाक्यों को पढ़ लेता है, जैसे नाना बाजार जा, राम आम खा आदि। नंबर 4, सृजन शक्ति, क्रिएटिविटी। पूर्व बाल्यावस्था के बालकों में सृजन शक्ति का भी तेजी से विकास होने लगता है। यदि उन्हें रंगीन पेंसिल एवं कागज दे दिए जाएं, तो वे उन रंगीन पेंसिलों से कागज पर अनेक चित्र उकेर देते हैं। उनमें से कुछ चित्र तो इतने सुंदर होते हैं कि जिन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबाना पड़ जाता है। इसी प्रकार विभिन्न गुटकों को जोड़कर सुंदर आकृति का निर्माण कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 264। नंबर 5, स्मरण, चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन पावर। बचपनावस्था में बालकों में स्मरण, चिंतन, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है, इसलिए वे सीधी सादी भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी बोली अत्यंत मधुर एवं मनभावनी होती है, परंतु 3 वर्ष के बालकों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। अब वह कल्पना एवं चिंतन के द्वारा मनगढ़ंत कहानियां कहते हैं, जैसे एक बिल्ली आई, वह दूध पी गई, मैंने उसे डांटा तो वह बोली, भैया मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे क्यों डांटते हो, मैं तो तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। और फिर मैं और बिल्ली खेलने लगे, बिल्ली हार गई और मैं जीत गया। इसी प्रकार पूर्व बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति एवं तर्क शक्ति का भी तेजी से विकास होने लगता है, परंतु शुरू शुरू में स्मरण शक्ति इतनी प्रबल नहीं होती, जिसके कारण वे किसी बीती बात को क्रमबद्ध तरीके से नहीं सुना पाते हैं। जैसे यदि बालक को ABC.Z या AAEE ज्ञा तक सुनाने को कहा जाए तो वे उसी क्रम में नहीं सुना पाते हैं, बल्कि कई जगहों पर भूल कर बैठते हैं। ऐसा स्मरण शक्ति में त्रुटि होने के कारण हो पाता है। नंबर 6 है जिज्ञासा, क्यूरियसिटी। 3 से 5 वर्ष के बालकों में जिज्ञासा की बहुत अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण वे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न इतने कठिन एवं जटिल होते हैं जिनका उत्तर दे पाना अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, छिपकली दीवार पर कैसे चलती है, मछलियाँ पानी में क्यों रहती हैं, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है, पानी में हमारा चेहरा क्यों दिखाई देता है, चंदा मामा आकाश में ही क्यों रहते हैं। इसी प्रकार वे प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। कुछ प्रश्न तो इतने वैज्ञानिक होते हैं कि यदि उनका सही उत्तर ढूंढ लिया जाए तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। नंबर 7 समस्या समाधान की क्षमता, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बालकों में जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता जाता है, वे कई छोटी मोटी समस्याओं का समाधान स्वतः ही करने लग जाते हैं। जैसे स्वयं भोजन करना, स्वयं नहाना, कपड़े बदलना, स्वतः जूते मोजे पहनना, अपनी पुस्तकों को उठाकर रैक पर रखना, खिलौनों को संभाल कर रखना आदि। नंबर 8 आत्मबोध। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में आत्मबोध अर्थात मैं का भी विकास हो जाता है। वह मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, हमारा, अपना, उसका आदि शब्दों में अंतर समझने लगता है। इस कारण वह केवल अपनी ही खिलौनों या वस्तुओं पर ही नहीं अपितु अपने माता पिता पर भी केवल अपना एकाधिकार समझने लगता है। आत्मबोध एवं स्व के कारण बालक अक्सर हठी एवं जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। वे अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए जिद कर बैठते हैं और उन्हें पूरा होने पर ही मानते हैं। इसके अलावा इस आयु के बालकों में अहम ईगो की भावना का भी विकास होने लगता है।